ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यशोदारोहिणीभ्यां ता समं बालस्य सर्वता रक्षां विदधरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। यशोदारोहिणीभ्यां ता समं बालस्य सर्वता रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। यशोदारोहिणीभ्यां ता समं बालस्य सर्वता रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छ भ्रमणादिभिः। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। यशोदा तथा रोहिणी माताओं के साथ जिन्होंने मुख्यतः बालक की जिम्मेदारी ली ताहा अन्य गोपियां समम यशोदा तथा रोहिणी की ही तरह महत्वपूर्ण बालस्य बालक के सर्वतः सारे खतरों से रक्षा रक्षा विदधीरे संपन्न किया सम्यक् भली भांति गोपुच्छ भ्रमणादि भी छवर डुलाकर। अनुवाद। तत्पश्चात माता यशोधा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए छवर डुलाया। कृपया दोहराएं। तत्पश्चात माता यशोदा तथा रोहिणी ने अन्य प्रौढ़ गोपियों समेत बालक श्री कृष्ण की पूर्ण संरक्षण देने के लिए चवर डुलाया। तात्पर्य। जब कृष्ण इतने बड़े खतरे से बच गए तो माता यशोदा तथा रोहिणी को मुख्य रूप से चिंता हो गई। अन्य वृद्धा गोपियों ने भी जो उन्हीं की तरह व्याकुल थीं, माता यशोदा तथा रोहिणी का अनुकरण किया। यहां हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थीं। वे जानती थीं कि बच्चे को सभी प्रकार के खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार चवर ढुलाई जाती है। गोरक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में गायों की सुरक्षा पर बल देते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आज भी वृंदावन के आसपास के गांवों के निवासी गाय की रक्षा करके सुख पूर्वक जीवन बिताते हैं। वे गोबर को अच्छे से संभाल कर रखते हैं और सुखा कर ईंधन की तरह उसका प्रयोग करते हैं। उनके पास पर्याप्त अन्न भंडार रहता है और गायों की रक्षा करने से उनके पास पर्याप्त दूध तथा दूध से बनने वाले पदार्थ होते हैं, जिनसे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। मात्र गोरक्षा से ग्रामीण लोग बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र तथा गोबर के औषधीय उपयोग भी हैं। तो सही भक्तों का स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। और प्रारंभ करने से पहले मैं सभी से आशीर्वाद की याचना करना चाहूँगा कि भगवान के ये अमल पुराण भागवतम के विषय में कुछ सेवा कर सकूं। तो ये श्लोक इस बारे में बता रहा है कि जैसे कल हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण बाल रूप में जब पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे तो सभी गोपियों ने हर्षित होकर कि भगवान सुरक्षित हैं बहुत ही उत्साह से उनको अपने पास वापस ले लिया। और अब यहाँ बताया जा रहा है कि माता यशोदा और रोहिणी और अन्य जो वृद्ध गोपियां हैं वो बहुत चिंतित हो गई हैं कि इतना बड़ा संकट हमारे बालक पे आया और भगवान की इच्छा से अभी वो उसकी रक्षा हो गई, लेकिन अब ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसको पूरी सुरक्षा प्रदान करें। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ हम पाते हैं कि घरेलू कार्यों में स्त्रियां बालक की रक्षा गाय की सहायता से ही करती थीं। तो अंग्रेजी में लिख रहे थे कि जो थोड़ा सा यहाँ मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, उसमें ऐसे बताया था कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों जो साधारण गांव की स्त्रियां भी होती थीं, उनको भी ये घरेलू कार्यों में गाय की मदद से कैसे रक्षा प्राप्त की जाए इसके बारे में पूरा ज्ञान होता था। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में गाय की रक्षा के विषय में और गाय से जो सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं मनुष्य समाज को उसके बारे में चर्चा की है। तो गोरक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु लोग इन बातों को भूल चुके हैं। तो वैसे तो गोरक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन समस्या क्या है कि लोग जो हैं इन बातों को भूल चुके हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि क्यों भूल गए हैं। तो वैसे ये भूलना स्वाभाविक ही है, क्योंकि कलयुग में जिस प्रकार से प्रभाव है कलयुग का, तो इंद्र तृप्ति के प्रति जो रुझान है, जो आकर्षण है और जो तीव्रता है वो दिन प्रतिदिन वृद्धि करती जा रही है। तो गौ रक्षा या गौ के साथ जीवन सतोगुण का प्रतीक है कि आपको सब वैदिक सभ्यता के अनुसार और इंद्रियों पे संयम करते हुए और आध्यात्मिक अनुशीलन करते हुए जब कोई जीवन जिया जाता है आध्यात्मिक उन्नति को केंद्र में रखते हुए, तो गौ का बहुत ही उसमें विशेष योगदान माना जाता है और बहुत ही उसको हटा नहीं सकते। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो पालन के लिए उन्होंने सुरभि गाय को भी प्रकट किया था, तो वो उनकी पुत्री हैं। और जितनी भी गौएं हैं वो सुरभि की ही वंश में आती हैं, वंशज हैं। तो इसके संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार से इंद्र तृप्ति के प्रति जो लोभ है वो बढ़ता है, तो फिर उसी मात्रा में या जिस मात्रा में आत्म साक्षात्कार के प्रति जो ज्ञान है या जो अनुशीलन है या जो इच्छा भी है वो लोगों की खत्म होने लगती है कलयुग के प्रभाव से, तो फिर इंद्र तृप्ति के प्रति उसी मात्रा में फिर लोभ भी बढ़ता है। और जितना जितना कोई आरामदायक शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि से जीवन जीने के लिए तत्पर रहता है, उत्सुक रहता है, जैसे आज के समाज में हम देखते हैं, तो उतना ही फिर शरीर को सुख देने का प्रयास किया जाता है। और जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें गांव जो होते थे वो केंद्र होते थे जीवन के, लेकिन जैसे जैसे सुविधाजनक जीवन के प्रति प्रयास होता गया, आधुनिकीकरण होता गया, इसको आधुनिकीकरण बोला जाता है कि जितनी जितनी आप शरीर के लिए सुविधाएं क्रिएट करते रहिए, बनाते रहिए, उतना आप आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो ये जैसे जैसे होता गया तो गांव की जगह शहर जो हैं वो मुख्य केंद्र बन गए जीवन के। और हम देखेंगे पाश्चात्य जगत में जैसे अमेरिका इत्यादि, वहां पर इसी प्रकार की सभ्यता है कि शहरों में मुख्य आबादी या मुख्य जीवन है। और लेकिन भारत जो पहले था वो हम जानते थे कि भारत जो है वो ग्राम विलेज ओरिएंटेड प्रदेश था, लेकिन अब क्या है आधुनिकीकरण हो रहा है तो अभी गांव जो है वो अब बच नहीं पा रहे हैं उतने। तो ये आधुनिकीकरण की प्रेरणा क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम शरीर के लिए सुविधाएं बटोरें। और जितना भी मॉडर्नाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है वो भी इसीलिए हुआ है, जैसे हम सुनते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब इसमें आवश्यकता क्या है, आवश्यकता है इंद्रिय तृप्ति या सुख सुविधाएं, शरीर को अच्छे से पालन मतलब करना। और जब इसमें से हमने आध्यात्मिक अनुशीलन का एलिमेंट हटा दिया, श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, तो जैसे ही एलिमेंट आध्यात्मिक अनुशीलन का हटा दिया तो फिर बस फिर यही रह जाता है कि शरीर असली आधुनिक या असली उच्च श्रेणी का व्यक्ति, ऊंचा व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति कौन हुआ जिसने ज्यादा से ज्यादा शरीर के लिए सुविधाएं प्राप्त कर ली। पहले क्या मापदंड होता था, किसने जितना ज्यादा आध्यात्मिक अनुशीलन प्राप्त कर लिया, तो जो लोगों का मनोभाव भी हो गया हम कैसे प्रगति करेंगे, तो प्रगति की दिशा बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अब आधुनिकीकरण होता गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, और बहुत ही इससे क्या हुआ कि सुविधाएं बहुत आसानी से मतलब कम मेहनत में ज्यादा चीजें मिल जाएं, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले जो होते थे विलेजेस में, घरों घरों में छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती थी कि उसमें ही खाद्य और कपड़े और जैसे हम बोलते हैं सुनते हैं ना क्राफ्ट्समैनशिप, ये सब चीजें होती थी। आजकल तो ये बस म्यूजियम की चीजें रह गई हैं, पहले वो यूज होती थी। तो अभी इन सब चीजों को किसने रिप्लेस किया है, इंडस्ट्रीज ने, फैक्ट्रीज ने, और इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें उत्पाद ज्यादा प्राप्त होता है कम शक्ति से देखने में, और यद्यपि शक्ति भी चाहिए, जो देखने में मनुष्य शक्ति है वो कम लग रही है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं। तो जब मैं इस पे विचार कर रहा था तो मेरे को प्रहलाद महाराज का श्लोक याद आया जो उन्होंने नरसिंह देव जी को प्रार्थना में अर्पित किया था, तो वो इस प्रकार से है, तस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्मा शोकाग्निना सकल योनि शूधयमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वदमे तव दास्य योगम्। तो इसमें ना प्रहलाद महाराज पूरे श्लोक में पूरी भौतिक अस्तित्व का क्या निचोड़ है और क्या इसका सॉल्यूशन है, दोनों दे रहे हैं। बता रहे हैं कि लोग बस इंद्रियों के प्रिय और इंद्रियों को क्या प्रिय है क्या इंद्रियों को प्रिय नहीं है उसी के चक्कर में फंसकर दुखों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस निकालते हैं। दुख औषधम तदपि दुखम, और जो सॉल्यूशन वो निकालते हैं दुखों के लिए वो उससे बड़ा दुख क्रिएट करते हैं। दुख औषधम तदपि दुखम अतध्याहम, तो कह रहे हैं इसलिए मुझे ये विशियस ये जो सर्कल बन जाएगा दुखों का इसमें नहीं फंसना, ये दलदल है। मुझे क्या बताइए, भूमन रमामि वद मे तव दास्य योगम, मैं इस दलदल में घूम घूम के बहुत परेशान हो गया हूं, तो आप मुझे अपना दास्य सेवा करने का तरीका बताइए। तो ये तो चलिए इसमें क्या था कि मेन पॉइंट ये था कि आधुनिकरण क्या है कि कुछ दुखों के निवारण के लिए कुछ भौतिक उन्होंने समाधान निकाले। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले बैलगाड़ी होती थी, तो बैलगाड़ी से लोग क्या करते थे, सामान्य ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ी से होता था, चाहे कोई पैसेंजर हो या चाहे कोई माल लेके जाना हो। जैसे आजकल जो ट्रक है और जो बस है वो पहले बैलगाड़ी ही होती थी। तो क्या हुआ कि फिर इंजन मोटर या इंजन का इन्वेंशन हुआ कि भाई अब जो है बिना किसी तेजी वाला वाहन प्राप्त हुआ है और बैलगाड़ी के ऊपर एडवांटेज है कि वही तेज चलेगा और आप जल्दी पहुंचेंगे और थोड़ा सा इसमें क्या था कंट्रोल भी है। क्या है, एनिमल्स को तो आपको थोड़ा प्रेम देना पड़ेगा कुछ उनसे, उनको वो उनका मूड भी होता है, लेकिन जो इंजन है वो तो उसका कोई मूड नहीं हो तो हम जैसे बटन चलाओगे वो चलेगा। तो ये थोड़ा ये इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि इंद्र तृप्ति से प्रेरित है सब कुछ। तो फिर क्या है, इन्होंने बुल्स वर रिप्लेस, मतलब जो हमारे बैल गाड़ी थी वो इंजन से रिप्लेस हो गई। तो अब देखिए इसमें क्या है, अब पहले बैलगाड़ी होती थी तो चाहे समय कम लगता था लेकिन लोगों के अंदर धैर्य होता था, लोगों के अंदर सत्वगुण होता था और जो है वो भी अपना जीवन आराम से जीते थे। अब क्या है, जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी लगे रहते हैं कि अभी 4G 5G की इंटरनेट स्पीड हम रुक नहीं सकते, ऐसा मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, अभी उसका वर्ड याद नहीं एग्जैक्टली, कि हम जो है आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप सोचते ही आ जाएगा, जैसे भगवान की संकल्प शक्ति की बात हो रही थी कि सोचते ही जो है चीजें हो जाती हैं, तो वैसे ही अभी सब जो लोग हैं वो इसी प्रकार से सोचते ही सब कुछ चाहिए। तो इससे क्या है कि ना धैर्य बच रहा है और तो फिर इससे और फिर स्पीड, तो फिर अब देखिए जितनी जितनी स्पीड वाली गाड़ी आती जाती है उतने उतने चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के, और फिर ट्रैफिक जैम और फिर पॉल्यूशन। तो ये सारी समस्याएं क्या हैं, एक समस्या के सॉल्यूशन की से क्रिएटेड अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं ये, और ये और बड़ी समस्याएं हैं। और अब क्या है कि पूरा का पूरा जो जगत है वो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। पहले पूरा का पूरा जगत डिपेंडेंट था गाय पे एनर्जी के लिए, अगर थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे तो। अब क्या है, पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट है। अब पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम जो है वो तो खत्म हो जाने वाली चीज है और साथ में उससे बहुत सारा नुकसान भी होता है प्रकृति को और मनुष्य के अंदर ईश्वर भाव भी बहुत वृद्धि होता जाता है। तो जो डिपेंडेंस है भगवान के ऊपर और भगवान की सृष्टि के ऊपर और संयम और सत्वगुण इत्यादि जो अच्छे गुण हैं वो भी खत्म होते जाते हैं और ग्रॉस लेवल पे बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। तो ये सब मुख्य रूप से क्या है, इंद्र तृप्ति का प्रभाव है। तो ये इसीलिए लोग इन बातों को भूल चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकरण भी होता जा रहा है वैसे वैसे हम तो भारत में भी जितने जहाँ पे गायों की इतनी वर्शिप होती, एक्चुअली पूरे जगत में भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे गाय को पवित्र माना जाता है और कोई देश ऐसा नहीं है। और वो लोग हमको या भारत को या वैदिक सभ्यता को थोड़ा सा क्रिटिकली देखते हैं कि भाई ये क्यों एक पशु की इतनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको पता है कि गाय जो है बहुत ही प्रिय है किसको, परम भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम के हम मंत्र में बोलते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसमें देखें तो हम देखेंगे गौ, ब्राह्मण और जगत, इन तीन चीजों के लिए भगवान सदैव हितैषी रहते हैं। लेकिन सबसे पहले किसका नाम आ रहा है? गौ का। तो गौ का कल्याण होगा, गौ की रक्षा होगी तो ब्राह्मण समाज की वृद्धि होगी, और ब्राह्मण समाज की जब वृद्धि होगी यानी कि सत्वगुण में लोग जब जिएंगे, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिएंगे, तो सभी लोगों का कल्याण होगा। तो ये सिस्टम है जो भगवान ने दिया है भौतिक जगत में सुख पूर्वक रहते हुए भगवत धाम जाने के लिए, जिसके लिए भौतिक जगत की रचना की गई थी। अब क्या है ये तो किसी को मालूम नहीं है कि भौतिक जगत की रचना क्यों की गई, क्योंकि इस प्रकार की कोई शिक्षा नहीं है, कोई इस प्रकार का कल्चर नहीं है। तो और क्या है फिर इसके लिए लोग किस प्रकार के जीवन को श्रेष्ठ या प्रगति मानते हैं? इंद्रिय भोग की सुविधाएं जितनी हम इकट्ठी कर पाए इससे नापा जाता है। इसलिए जब हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसमें यही क्राइटेरिया होता है किसने कितनी इंद्र तृप्ति की सुविधाएं अर्जित कर ली। कुछ समय पहले हमने ये पढ़ा था न्यूज़पेपर में या कहीं रिपोर्ट में कि एक ना हैप्पीनेस इंडेक्स करके कुछ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ वो है। तो वो बता रहे थे कि हम देखते हैं कि यद्यपि पर कैपिटा इनकम, मतलब कि जो धन या सुविधाओं की बात में, तो कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग बहुत आगे हैं, लेकिन जो संतुष्टि का आंकड़ा अगर देखा जाए या खुशी का स्तर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे आगे है। वो ऐसा उन्होंने एनालाइज करके दिया। तो बांग्लादेश वैसे भारत से भी कमजोर है इकोनॉमी में, तो इसका वो समझ नहीं पाएगी क्या चक्कर है। तो इसका जो समस्या, इसकी जो बात है, ये वामन देव जी समझा रहे हैं 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में। जब बलि महाराज से वो मांग रहे हैं 3 पग भूमि, तो बलि महाराज कह रहे हैं मैं तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, यद्यपि तुम ब्राह्मण के पुत्र हो और तुम्हारे पास बहुत सारा वैदिक ज्ञान है और तुम बहुत अच्छी शिक्षाएं दे सकते हो, लेकिन अभी जो है आप थोड़ी बुद्धिहीनता वाली बात कर रहे हो कि भाई 3 पग वो भी आपके, आपके 3 पग क्या है, हाथी के होते तो बात और थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे पूरा का पूरा वो ले सकते हो, लोक ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो, आप मुझे 3 पग ले रहे हो। तो फिर वामन देव जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृपा। भगवान ने कहा मेरे प्रिय राजा, अगर किसी को तीनों लोकों का भी सुख प्राप्त हो जाए लेकिन उसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो यही कारण है कि चाहे कितनी भी पर कैपिटा इनकम हो, कितनी भी डेवलपमेंट हो, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन संतुष्टि आती है इंद्र संयम से। और वैदिक समाज में या वैदिक सभ्यता में इसी के ऊपर हमें शिक्षा दी जाती है। तो एक ये कारण है कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता और खासकर जो गौओं के ऊपर निर्भरता है वो कैसे कैसे कम होती जा रही है आज के समाज में। तो अब ये तो हमने इसके ऊपर चर्चा की कि इसका कारण क्या है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यद्यपि सुविधाओं को अर्जित करने के लिए, सुख के लिए ही ये प्रयास किए गए थे कि हम इन उद्योगीकरण इत्यादि के, और इसीलिए किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सुख नहीं है। दुख औषधम तदपि दुखम, इससे और बड़ी समस्या बन रही है। लेकिन उसके विपरीत जो वैदिक सभ्यता में गौओं को केंद्र में रख के जब जीवन जिया जाता था तो लोग भौतिक रूप से भी बहुत खुश होते थे। अभी वो अध्याय याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन 10वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो गोकुल में ग्वाल बाल होली खेलते थे मक्खन से, वो चैप्टर है उसमें क्या है कि गोप गोपियां शायद नंदोत्सव ही है कि मक्खन और दूध और दही से होली खेल रहे हैं, और उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्णा बुक में कि इतनी समृद्धि होती थी गऊओं के पालन करने से, गऊओं के ऊपर निर्भर होकर जीवन जीने से, कि इतना दूध दही होता था कि वो ऐसे खेल सकते थे होली, मतलब लुटा सकते थे, और उसके द्वारा फिर ट्रेडिंग करके उनको हर किसी चीज की कमी नहीं थी, बहुत धन वैभव से पूर्ण था सब कुछ। और जो असली धन है वो गोधन है, इसके बारे में बताया जाता है शास्त्रों में, जो धन का वो है मेजरमेंट वो नोटों से नहीं किया जाता, वो क्या जाता है कि कितनी आपके पास गायें हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपाल हैं, और उन्होंने उदाहरण भी दिखाया कि उनके पास 900,000 गायें थी, और शचीपति पूजी जब आए थे तो उन्होंने बताया था कि 1,00,000 गायें थी भगवान नंद बाबा के पास। तो ये गाय जो है असली धन है। अब ये कोई पूछ सकता है कि गाय धन कैसे है, तो इसका बहुत ही विश्लेषण किया गया। एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मैं कल पढ़ रहा था, तो गाय जो है वो ऐसी ऐसी चीजें हमें प्रदान कर देती हैं जो हम आज के बहुत सारे धन देके भी नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से बहुत धन है। जैसे कि गाय का जो गोबर होता है, उस वैसे तो गोबर गोबर क्या है, गोबर तो ऐसे ही है पड़ा हुआ खत्म है, गोबर ही कोई वैल्यू है, रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। लेकिन गाय का गोबर जो होता है उसको पहले कंडों के रूप में उसको यूज करते थे, क्या करके उसको फ्यूल बनाया जाता था, तो और फिर उसे जब सब कुछ कुकिंग हो जाती थी तो फिर उसकी ना राख बचती थी। ये राख अपने आप में बहुत वैल्यूएबल चीज थी, मेरे को भी कल ही पता लगा। तो वो राख क्या थी कि वो जो एक तो उससे आप जो उसका साइड इफेक्ट तो ये है कि आप बर्तन बर्तन धोते थे, तो जो आजकल हम बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं साबुन और डिटर्जेंट, उससे उसे उसकी इन समस्याएं भी हैं। एक तो उसे केमिकल इंडस्ट्री में बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा उग्र कर्म हो रहा है। उसके बाद वो पानी को और जमीन को खराब करता है, हमने पढ़ा था उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे जमीन की जो उपजाऊ फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये उससे तो ना कोई कॉस्ट भी नहीं, आपने बस सीधा धो लिया, आपका काम भी हो गया, कोई और एनवायरमेंट को भी या वातावरण को भी कोई समस्या नहीं हुई। सबसे दूसरा था स्टोरेज में था, स्टोरेज कि आजकल हम किसी चीज को स्टोर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो पेस्टिसाइड मारते हैं उसके ऊपर, खाद्य पदार्थ हो, मान लो 2-3 साल चलाना है तो उसके ऊपर कुछ दवाई डालेंगे, कुछ पेस्टिसाइड डालेंगे, कुछ फर्टिलाइजर चलो उगाने के लिए पेस्टिसाइड डालेंगे, इंसेक्टिसाइड्स डालेंगे, तो ये पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मतलब इससे जहर जहर जाता है खाने की चीज में, और वो हम खाते हैं, तो आजकल खाने के वजह खाने में इतने जहर होने के कारण भी एक कारण है कि जो शरीर में बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं लोगों के, कैंसर इत्यादि। एक कारण ये भी है कि जो खाना है उसमें या जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें टॉक्सिक है। तो पहले क्या करते थे कि जो अनाज होता था गेहूं है उसको ना राख में मिक्स करके रख देते थे, तो वो 2-3 साल तक आराम से चलता था और उसका कोई वो भी नहीं है बाय प्रोडक्ट, मतलब उसका कोई हार्म भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। जब आपको जैसे मान लीजिए अकाल पड़ गया, किसी समय बारिश नहीं आई तो राजा वगैरह उसको दे देते थे जन सामान्य में वितरण होने के लिए। तो देखिए कोल्ड स्टोरेज हम सेटअप करते हैं, इतनी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और वो क्या उससे जो पर्पस सॉल्व उसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ गाय के गोबर की राख से हो जाता था। तो ये एक वो है गाय की वैल्यू। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक बार हमारे मंदिर में सेशन हुआ था, एक सीनियर वैष्णव आए थे चौपाटी से, तो उन्होंने गाय के ऊपर सेमिनार दिया था, तो उन्होंने बताया कि उनको पर्सनली कान में कुछ प्रॉब्लम थी, और अगर मेडिकल में या मतलब हॉस्पिटल में जाते एलोपैथी का ट्रीटमेंट जो था उसमें 3-4 लाख का खर्चा से बताया था, आपको ऑपरेशन होगा फिर दवाई होगी ये सब चीजें होंगी, और देखिए फिर समय और जो आपकी एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, आपका जो शरीर का कार्य करने की वो क्षमताएं, तो वो तो अलग बात है। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको गाय में श्रद्धा थी और उनको गाय के बारे में काफी ज्ञान भी था, तो उन्होंने घी का प्रयोग किया। मुझे याद नहीं उन्होंने एग्जैक्टली क्या उपचार किया था, पर उन्होंने घी को शायद कान में डाला या कुछ किया कि उनका वो प्रॉब्लम जो है वो 2-3 महीने में ही या जल्दी ही ठीक हो गई। और जिसमें 3-4 लाख रुपए लगने थे और साथ में आपके 1-2 साल भी लगते और आपका कान भी ऑपरेट होता, बहुत सारी चीजें होती, वो सिर्फ एक छोटे से गाय के घी से हो गया। तो ये सब गाय की धन है, ये गोद अगर हम इसको इक्वेट करें तो ये धन है, मतलब ग्रॉस लेवल पे भी। और फिर आध्यात्मिक लेवल पे तो इसका अब कहना ही क्या, गाय जो है प्रत्येक ब्राह्मण, पहले प्रभुपाद कहते हैं गाय रखते थे और शालिग्राम रखते थे और भगवान की अर्चना करते थे। तो आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए तो गाय से पूरा वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि हम बहुत ही कंफर्ट फेवरेबली अनुकूल तरीके से आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक और गाय की महत्वपूर्ण बताते हैं कि वही गोबर की ही वैल्यू है। देखिए कुछ हम जनरली देखते हैं कि गाय जब तक दूध देती है तब तक तो महत्वपूर्ण है, उसके बाद उसको कौन पालेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, तो भेज दो कतल खाने में। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे होता है, लेकिन अगर हम देखें कि गोबर में असली लक्ष्मी है, एक्चुअली भगवान गाय के जो शरीर में सारे वो हैं, देवी देवता हैं, तो गोबर के स्थान पर लक्ष्मी जी का वास है। तो उसमें ऐसे कल ये मॉडर्न एनालिसिस की स्टडीज के अनुसार वो बता रहे थे कि जैसे हमने सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ भारत में 1970 में, तो बहुत इसका हमें पढ़ाई में भी लिखा है, बताया जाता था कि उत्पाद बढ़ गया, पंजाब में हरित क्रांति आई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वास्तविकता में वो नुकसानदायक था। हाँ, कैसे, उसमें बताया कि जो जमीन है उसमें आपने कुछ फर्टिलाइजर यूज किए और कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड उसमें सीड डाले, तो जो है उत्पाद है, उन्होंने 10 साल का कंपेयर किया 1970 और 1980 का, तो उत्पाद में तकरीबन 25% इंक्रीज हुआ, लेकिन उत्पाद करने की कॉस्ट में 200% इंक्रीज हुआ, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डबल हो गई, और साथ में जो जमीन की उपजाऊ फर्टिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बताया था कि अगर हमें किसी जमीन को बंजर होने से बचाना है और उसी जमीन पे खेती करते रहना है, तो 5 हेक्टेयर जमीन में या 5 एकड़ जमीन में 5 टन गोबर अगर हम डालें और उस पे गाय अगर विचरण करे तो वो जमीन उपजाऊ रहेगी, और ऐसी जमीन पे जब खेती होगी तो जो उत्पाद होगा वो अगर आज के तरीके से किया जाएगा तो उसका आधा होगा, तो ऐसे बताया गया था। तो ये भी एक गाय का गोधन है। तो ये सब जो चीजें हैं, इस गाय को क्यों पीछे कर दिया गया, इसको क्यों हमने भूले, इसके यही कारण है कि एक तो लोभ और इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ आसक्ति, और साथ ही जो हमारे लीडर्स हैं उनके द्वारा भी गाय को कोई सुरक्षा इत्यादि प्रदान नहीं की गई, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति उनका ज्यादा रुझान रहा। तो ये सब कुछ बातें हैं, और अब हम सुनेंगे कि प्रभुपाद जी क्या चाह रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तो बताया कि गौ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे गो रक्षा से अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं, शिला प्रभुपाद जी था, और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो जब 1966 में इस्कॉन की स्थापना हो गई थी तो कुछ जो शुरुआती शिष्य थे प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी सोचते थे कि इनको जो है वैदिक सभ्यता भी देनी पड़ेगी, तभी जो है इनका होलसम ग्रोथ होगा आध्यात्मिक जीवन में, कि केवल भजन क्रिया और भक्ति के सिद्धांतों के पालन से शुद्धिकरण तो होगा, लेकिन एक वातावरण जो होगा उससे बहुत अनुकूल हो जाएगा। तो बाबा जी ने 1968 में ही अपने शिष्यों को ये बोला कि हमें एक फार्म कम्युनिटी की आवश्यकता भी है, तो उन्होंने न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी के लिए बोला। तो कीर्तनानंद महाराज जो थे उनको इसका कार्यभार सौंपा गया और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्थान चूज किया उसके लिए, और वेस्ट वर्जीनिया नाम की एक जगह में न्यू वृंदावन फार्म कम्युनिटी उन्होंने सेटअप की। और प्रभुपाद जी कॉन्टिन्यूसली लेटर्स में उनको बताते रहते थे कि इसकी बहुत जरूरत है, आज की जो सिविलाइजेशन, आज का जो समाज है वो पूर्ण रूप से प्रतिकूल है, तो हमें ऐसे समाज के ऊपर निर्भर रह के भक्ति करने की, हमारी जो संस्था है उस ऐसे भौतिक समाज में निर्भर रहने की हमें आवश्यकता नहीं है, हम अपना भोजन और अपना खाना खुद उगाना चाहिए और गाय की रक्षा करके हमें जीवन जीना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें समय मिलेगा गाय की रक्षा करके जब हम जीवन जिएंगे और अपना खाद्य हम खुद उगाएंगे, तो हमारे पास बहुत ही समय होगा भगवान की भक्ति करने के लिए। और न्यू वृंदावन में 6 टाइम आरती 6 टाइम भोग, मंदिर का ही शेड्यूल पूरा फॉलो होता था, और लोग जो हैं अपना जीवन भी जी सकते हैं और उन बाहर की चीजों पे प्रभुपाद कहते हम तो अपनी रुई भी उगाएंगे और अपने कपड़े भी हम खुद बनाएंगे, ऐसी विजन प्रभुपाद जी ने दिया था कि हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है बाहर की चीजों, हम सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी सेटअप करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने 1968 में ही कर दिया था। और एक लेटर में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपकी सिविलाइजेशन पे धिक्कार है, क्यों, गाय को आप मारते हो खाते हो और आप जो है कुकुर को अपना दोस्त बनाते हो। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मतलब धिक्कार है कैसी आपका, आप हमें बहुत सशक्त प्रचार करने की आवश्यकता है, लोग इसके इस कुकुर के साथ रहेंगे तो फिर नीचे स्तमोगुण में जाएंगे और फिर नरक में ही जाएंगे, कोई गाय के साथ रहेंगे तो सतोगुण विकसित होगा और भगवान के नजदीक जाएंगे। तो प्रभुपाद जी का बहुत ज्यादा इसमें प्रभुपाद कॉन्शियस थे गाय रक्षा के, गो रक्षा के लिए। और प्रभुपाद जी अपने जो जब ये फार्म कम्युनिटी अच्छे से सेटअप हो गई थी न्यू वृंदावन में, तो प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपके पास कोई अच्छी गाय है वहां पे तो आप देखिए हम भारत में इंपोर्ट करेंगे वृंदावन और मायापुर प्रोजेक्ट्स में करने के। प्रभुपाद को भारत के मतलब एक तरह से लग नहीं रहा था कि वहां हमारे यहाँ भारत में गाय है, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि भारत में गाय तो है और गाय मतलब देशी गाय तो भारत में ही है, लेकिन मूड ये था प्रभुपाद जी का कि यहाँ पर बहुत गाय का शोषण भी हो रहा है तो हम अच्छी खुश हैप्पी काउस को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और फिर गौ रक्षा स्थापित करेंगे अपने, और ऐसा उदाहरण हम स्थापित करेंगे कि जो खुश गाय है वो ज्यादा दूध देती है। अभी क्या है, गाय डरी रहती है और उसको पता है उसका कत्ल हो जाएगा और तो उसके बच्चे को उससे दूर ले जाते हैं तो फिर वो खुशी से दूध नहीं देती, और ऐसे दूध की वैल्यू भी इतना ज्यादा न्यूट्रिशन, जितना न्यूट्रिशन उसमें होगा कि जिसमें गाय ने खुशी से दूध दिया, तो ये तो दूध की वैल्यू है और फिर गोबर की वैल्यू है और फिर गौमूत्र की भी बहुत, उसका भी बहुत महत्व है। तो गाय अपने आप में सभी मनुष्य के पालन के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता है ब्रह्मा जी ने दिया है एक्चुअली। तो ब्रह्मा जी देखिए जिन्होंने प्रभुपाद बोलते थे ओरिजिनल इंजीनियर ऑफ द यूनिवर्स, जो हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया सृष्टि करता है, सेकेंडरी क्रिएशन जो उन्होंने किया है, तो उन्होंने जब दिया है तो इसको अगर हम इसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम देखते हैं भौतिक रूप से भी बहुत सुख रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कुछ विचार हैं, तो हम यहीं पे विराम देंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हमने सारांश में चर्चा की कि जो गाय है उनकी रक्षा से सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और क्यों लोग इनको भूल रहे हैं, क्योंकि इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन भी यही है कि हम जितना ज्यादा हरिनाम संकीर्तन और हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे तो उनका जो भौतिक लोभ है और अज्ञानता है वो दूर होगी और उनके अंदर आध्यात्मिक अनुशीलन करने की जिज्ञासा और प्रेरणा और बढ़ेगी और फिर जैसे जैसे वो गंभीर बनेंगे आध्यात्मिक जीवन में तो गाय की रक्षा भी हम कर पाएंगे। और हमारी जिम्मेदारी प्रचार के साथ ये भी है कि हम जितनी हमारी कम क्षमता है उसके अनुसार हम गौ रक्षा में भाग लें। और इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं रेलिवेंट सोर्सेस से। तो विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।